एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। मैं हूं आपका पहला मेजबान
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। आज हम एक ऐसी तकनीक की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो आजकल हर जगह है, डीप लर्निंग। और इसे समझने के लिए हम सहारा ले रहे हैं जॉन डी केल्लेहर की किताब डीप लर्निंग का।
हाँ, और ये टॉपिक सिर्फ टेक वालों के लिए नहीं है। हम सबके फोन में जो वॉइस असिस्टेंट हैं या जो हमें ऑनलाइन सुझाव मिलते हैं कि क्या देखें क्या सुने,
बिल्कुल, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं डीप लर्निंग ही है। ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है ना?
एकदम। पर सवाल ये उठता है कि भाई ये काम कैसे करती है, क्या चक्कर है इसका? लोग अक्सर इसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं, मतलब कुछ रहस्यमयी सा।
हाँ, कि अंदर क्या हो रहा है पता नहीं।
इसी पर्दे को हटाने की कोशिश करती है, और वो भी आसान भाषा में। और इसे समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि, जैसा आपने कहा, ये भविष्य बना रही है।
सही बात है। तो फिर शुरू करते हैं लेखक से। ये जॉन डी केलर साहब हैं कौन और इनकी बात में ऐसा क्या खास है?
तो जॉन डी केलेहर वो डबलिन की टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं। इनका मेन काम एआई, मशीन लर्निंग और खासकर एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर रहा है।
एनएलपी मतलब मशीनें भाषा कैसे समझती हैं वो?
हाँ बिल्कुल, इस फील्ड में उन्हें 20 साल से ज्यादा का अनुभव है। कई रिसर्च सेंटर से भी जुड़े हैं, मतलब एकेडमिक तौर पर तो काफी गहरे जानकार हैं।
तो थ्योरी में तो मजबूत पकड़े।
हाँ, पर उनकी असली खूबी ये है कि वो सिर्फ रिसर्चर नहीं है, उन्होंने मशीन लर्निंग और डेटा साइंस पर और भी किताबें लिखी हैं। और उनकी खासियत है मुश्किल तकनीकी चीजों को आम पाठक के लिए आसान बनाना।
अच्छा, ये तो बहुत जरूरी हुनर है।
बिल्कुल, वो MIT प्रेस की एक जानी मानी सीरीज है एसेंशियल नॉलेज, उसके भी लेखक हैं। उस सीरीज का काम ही यही है, कॉम्प्लेक्स ज्ञान को सब तक पहुंचाना।
तो एक तरह से वो पुल का काम कर रहे हैं जो विशेषज्ञ हैं और जो आम लोग हैं उनके बीच।
एकदम सही पकड़ा। वो रिसर्चर भी हैं और टीचर भी, तो उन्हें पता है कि तकनीकी बारीकियां क्या हैं, और ये भी समझते हैं कि एक आम इंसान को क्या समझने में दिक्कत आती है। उनकी किताब सिर्फ कैसे पर फोकस नहीं करती, बल्कि क्या, क्यों और इसका मतलब क्या है, इन सवालों पर ज्यादा जोर देती है, एक बुनियादी समझ बनाने पर।
ये अप्रोच तो काफी अच्छा है। चलिए अब किताब पर आते हैं। इसका मेन मकसद क्या है, क्या कहना चाहती है ये किताब?
देखिए, किताब का लक्ष्य सीधा है, डीप लर्निंग का एक ऐसा परिचय देना जो बहुत ज्यादा तकनीकी ना हो पर आपको पूरी सूरत दे दे। ये उन सब के लिए है जो टेक एक्सपर्ट नहीं है, स्टूडेंट्स, बिजनेस वाले लोग, पॉलिसी मेकर्स या कोई भी जिसे बस जानने की इच्छा हो।
और इसमें भारी भरकम गणित या कोड वगैरह नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। केलेहर आसान उदाहरणों, कहानियों और एक लॉजिकल तरीके से बात को आगे बढ़ाते हैं।
अच्छा,
तो किताब का मूल संदेश क्या है? क्या डीप लर्निंग कोई अचानक से आई हुई जादुई चीज है?
नहीं, और यहीं केलेहर एक बहुत जरूरी बात कहते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये असल में मशीन लर्निंग के जो पुराने आइडियाज थे ना, उन्हीं का अगला विकसित रूप है।
अच्छा, मतलब एकदम नया कुछ नहीं?
हाँ, मतलब आइडियाज पुराने हैं पर उनका स्केल और करने का तरीका नया है। फर्क यह है कि पहले हम कंप्यूटर को नियम बताते थे, कोड लिखते थे हर चीज के लिए।
हाँ, रूल बेस्ड सिस्टम्स।
एग्जैक्टली, अब मशीनें खुद डेटा से पैटर्न सीखकर फैसले लेती हैं। ये बड़ा शिफ्ट है।
ओके, तो ये डेटा से सीखने वाली बात, पर सवाल ये है कि ये अचानक इतनी कामयाब कैसे हो गई? आजकल हर तरफ इसी की बात है।
हाँ, तो केलेहर इसे कहते हैं परफेक्ट स्टॉर्म। मतलब तीन चीजें बिल्कुल सही टाइम पर एक साथ आ गई।
परफेक्ट स्टॉर्म, क्या है वो तीन चीजें? पहला, बिग डेटा। इंटरनेट, सेंसर्स, स्मार्टफोन्स, इन सब से इतना ज्यादा डेटा इकट्ठा हो गया, खासकर लेबल किया हुआ डेटा, कि मशीनों को सिखाने के लिए काफी मसाला मिल गया।
डेटा तो है आजकल।
दूसरा, पावरफुल हार्डवेयर, खासकर GPUs यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स। ये मूल रूप से गेमिंग के लिए बने थे, पर पता चला कि ये डीप लर्निंग वाली गणनाओं के लिए एकदम सही है, बहुत तेजी से काम करते हैं।
अच्छा, गेमिंग वाले कार्ड्स, वाह।
हाँ, और तीसरा, बेहतर एल्गोरिथम, मतलब सीखने के तरीके भी समय के साथ बेहतर होते गए। तो ये तीनों चीजें, डेटा, हार्डवेयर, एल्गोरिथम, जब एक साथ मिली तो डीप लर्निंग ने वो रफ्तार पकड़ी जो आज हम देख रहे हैं।
ये परफेक्ट स्टॉर्म वाली बात वाकई में पूरी तस्वीर साफ करती है। तो किताब का सफर कैसा है, कहाँ से शुरू होके कहाँ तक ले जाती है?
सफर शुरू होता है बिल्कुल बेसिक से, एआई क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, फिर वो सबसे छोटी इकाई परसेप्ट्रॉन यानी एक नकली न्यूरॉन उससे मिलवाती है, फिर धीरे धीरे बताती है कि कैसे इन अकेले न्यूरॉन्स को जोड़कर नेटवर्क बनते हैं। पहले सिंपल, फिर कई परतों वाले कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, फिर वो मेन डीप लर्निंग मॉडल्स जैसे CNN और RNN उनकी बात करती हैं,
जो तस्वीरें पहचानने या भाषा समझने वाले मॉडल्स हैं।
हाँ वही, और आखिर में किताब ये भी बताती है कि इसकी सीमाएं क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, नैतिक सवाल क्या है, मतलब एक पूरी कहानी।
ठीक है, तो चलिए इस कहानी के कुछ अहम हिस्सों को थोड़ा और खोलते हैं। शुरुआत में AI, ML, DL के रिश्ते की बात हुई, ये थोड़ा और समझाएंगे।
हाँ, ये अक्सर कंफ्यूज करता है, तो किताब इसे साफ करती है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सबसे बड़ा गोल है मशीनों में इंसानी जैसी समझ पैदा करना।
ओके।
मशीन लर्निंग ML इसका एक तरीका है। इसमें मशीनें डेटा से सीखती हैं बिना सीधे प्रोग्राम किए, और डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही एक खास तरीका है, जो इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करता है जिनकी कई परतें होती हैं। तो सोचिए, एक बड़े गोले के अंदर एक छोटा गोला, उसके अंदर एक और छोटा गोला, AI, ML, DL।
ठीक है, ये साफ हुआ। और वो सबसे छोटी इकाई परसेप्ट्रॉन, वो क्या चीज है?
परसेप्ट्रॉन को आप एक बहुत ही बेसिक फैसला लेने वाला समझ सकते हैं। ये कुछ इनपुट लेता है, हर इनपुट का अपना वजन मतलब महत्व होता है, फिर ये एक सिंपल सा हिसाब लगाकर हाँ या ना जैसा कुछ आउटपुट देता है।
जैसे किताब में उदाहरण था, मौसम के हिसाब से दौड़ने जाना है या नहीं।
हाँ बिल्कुल वैसा ही, ये एकदम शुरुआती मॉडल था, इसकी अपनी सीमाएं थीं, अकेला ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था, और इसी वजह से बीच में AI में एक सुस्ती का दौर भी आया था जिसे AI विंटर कहते हैं।
अच्छा, तो फिर एक अकेले परसेप्ट्रॉन से हम इन बड़े बड़े नेटवर्क्स तक कैसे पहुंचे? यहीं से डीप वाली बात शुरू होती होगी।
बिल्कुल, यहीं से किताब का मजा बढ़ता है। जब हम इन परसेप्ट्रॉन्स को एक के बाद एक परतों में जोड़ते हैं तो बनता है मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन, या जिसे हम आमतौर पर न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। इसमें इनपुट परत होती है जहां से डेटा आता है, फिर बीच में एक या ज्यादा छिपी हुई परतें या हिडन लेयर्स होती हैं, और आखिर में आउटपुट परत जहां नतीजा मिलता है।
और डीप का मतलब बस यही है कि इसमें कई सारी छिपी हुई परतें हैं।
हाँ, मूल रूप से यही। शैलो नेटवर्क में कम परतें होती हैं, डीप में ज्यादा।
पर इन ज्यादा परतों का फायदा क्या है, क्यों चाहिए हमें इतनी परतें?
यही तो डीप लर्निंग का असली जादू है। इसे कहते हैं पदानुक्रमित प्रतिनिधित्व या हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन।
हायरार्की वाला रिप्रेजेंटेशन, ये क्या होता है?
इसका मतलब है कि नेटवर्क जानकारी को अपने आप स्टेप बाय स्टेप सरल से जटिल लेवल पर समझना सीखता है। जैसे मान लीजिए नेटवर्क एक तस्वीर देख रहा है, तो शायद पहली परत सिर्फ किनारों या कोनों को पहचानेगी, बहुत बेसिक चीजें। फिर अगली परत इन किनारों को जोड़कर छोटे छोटे आकार जैसे आंख या नाक या कान पहचानना सीखेगी।
अच्छा।
और फिर उसके ऊपर की परत इन आकारों को जोड़कर पूरा चेहरा पहचान लेगी। तो आप देख रहे हैं कैसे जानकारी परत दर परत ज्यादा जटिल होती जा रही है, सरल फीचर से कॉम्प्लेक्स फीचर्स तक।
हाँ, ये तो कमाल है, मतलब नेटवर्क खुद ही सीख रहा है कि क्या देखना है, किस लेवल पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है, हमें उसे बताना नहीं पड़ता।
एग्जैक्टली, यही पारंपरिक मशीन लर्निंग से सबसे बड़ा फर्क है। पहले डेटा साइंटिस्ट को खुद सोचना पड़ता था कि कौन से फीचर्स, जैसे चेहरे की पहचान के लिए आंखों के बीच की दूरी, मशीन को बताने हैं। इसे कहते थे मैनुअल फीचर इंजीनियरिंग, बहुत मेहनत का काम था।
और डीप लर्निंग ये खुद कर लेता है।
हाँ, वो सीधे डेटा से सीख लेता है कि कौन से फीचर्स काम के हैं, किस लेवल पर, और यही इसकी ताकत है। ये ऐसे पैटर्न भी पकड़ सकता है जो शायद इंसानों की नजर से छूट जाएं।
वाह, ये तो सच में इंप्रेसिव है। पर ये नेटवर्क सीखते कैसे हैं, मतलब ट्रेनिंग कैसे होती है इनकी? आपने बैक प्रोपेगेशन और ग्रेडियंट डिसेंट का जिक्र किया था।
हाँ, ये सीखने की मशीनरी है। देखिए, ये थोड़ा तकनीकी है, पर किताब इसे एक बहुत बढ़िया उपमा से समझाती है। सोचिए, आप एक पहाड़ी पर हैं, घना कोहरा छाया हुआ है, और आपको नीचे घाटी में उतरना है, आपको रास्ता नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे? आप अपने आसपास पैर रखकर महसूस करेंगे कि ढलान सबसे ज्यादा किस तरफ है,
है ना?
हाँ, जिधर ज्यादा ढलान होगी उधर ही कदम बढ़ाऊंगा।
बस ग्रेडियंट डिसेंट यही है। नेटवर्क पहले एक अंदाजा लगाता है, जैसे ये तस्वीर बिल्ली की है, फिर वो देखता है कि उसका अंदाजा कितना गलत था। इसे कहते हैं त्रुटि या एरर।
ओके।
फिर आता है बैक प्रोपेगेशन। ये इस गलती की खबर नेटवर्क में पीछे की तरफ परत दर परत भेजता है और ये हिसाब लगाता है कि नेटवर्क के हर कनेक्शन, जिन्हें वेट्स कहते हैं, ने उस गलती में कितना योगदान दिया।
अच्छा, मतलब किसकी वजह से गलती हुई।
हाँ, किसकी वजह से कितनी गलती हुई। और फिर ग्रेडियंट डिसेंट उन कनेक्शंस को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करता है उसी दिशा में जहां ढलान सबसे ज्यादा है, ताकि अगली बार गलती कम हो।
मतलब पहाड़ी से नीचे उतरने जैसा, छोटे छोटे कदम सही दिशा में।
बिल्कुल। और ये प्रक्रिया लाखों करोड़ों बार दोहराई जाती है। हर बार नेटवर्क थोड़ा बेहतर होता जाता है और धीरे धीरे वो सही पैटर्न पहचानना सीख लेता है।
वाह, ये पहाड़ी वाला उदाहरण तो एकदम दिमाग में बैठ गया। तो ये हुआ सीखने का तरीका। आपने ये भी कहा था कि खास कामों के लिए खास तरह के नेटवर्क्स होते हैं।
हाँ बिल्कुल। जैसे हमारे पास अलग अलग कामों के लिए अलग अलग औजार होते हैं, वैसे ही डीप लर्निंग में भी है। किताब दो सबसे जरूरी तरह के नेटवर्क्स पर खास ध्यान देती है। पहला है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, यानी CNNs।
CNNs, ये नाम सुना है, ये क्या करते हैं?
ये खास तौर पर विजुअल डेटा, मतलब तस्वीरें और वीडियो समझने के लिए बने हैं। सोचें फेसबुक कैसे तस्वीरों में दोस्तों को टैग कर देता है, या सेल्फ ड्राइविंग कारें सड़क पर चीजों को कैसे पहचानती हैं। इनके पीछे अक्सर CNNs का हाथ होता है। ये नेटवर्क हमारी आंखों के देखने के तरीके से प्रेरणा लेते हैं। ये इमेज को छोटे छोटे हिस्सों में देखते हैं, उनमें पैटर्न ढूंढते हैं, जैसे किनारे, रंग, बनावट, और फिर इन छोटे पैटर्न्स को जोड़कर बड़ी चीजों को पहचानते हैं।
अच्छा, ये विजुअल कॉर्टेक्स जैसा काम करते हैं।
हाँ, कुछ वैसा ही। 2012 में इमेज नेट नाम का एक बड़ा चैलेंज हुआ था। उसमें एलेक्स नेट नाम के एक CNN ने जो नतीजे दिए, उसने सबको चौंका दिया था। वहीं से डीप लर्निंग का बूम असल में शुरू हुआ।
ओके, तो तस्वीरों के लिए CNNs और दूसरी तरह के नेटवर्क कौन से थे?
वो है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, यानी RNNs। ये उन डेटा के लिए हैं जहां क्रम या सीक्वेंस मायने रखता है।
सीक्वेंस,
जैसे कि शब्द एक वाक्य में, आप शब्दों का क्रम बदल दें तो मतलब बदल जाता है ना? या फिर समय के साथ बदलता मौसम का डेटा, या शेयर बाजार के आंकड़े, या हमारी बातचीत जिसमें हर अगला शब्द पिछले शब्दों पर निर्भर करता है।
हाँ, ये बात तो है। तो RNS इस क्रम को कैसे संभालते हैं?
RNS में एक खास तरह का लूप होता है। ये उन्हें पिछली जानकारी को याद रखने में मदद करता है। उनके पास एक तरह की इंटरनल मेमोरी होती है, तो जब वो अगला शब्द या डेटा पॉइंट देखते हैं तो उन्हें पिछला कॉन्टेक्स्ट पता होता है।
अच्छा, इनमें मेमोरी होती है।
हाँ, इसीलिए ये भाषा समझने, मशीन ट्रांसलेशन जैसे गूगल ट्रांसलेट, या स्पीच रिकग्निशन जैसे सिरी या एलेक्सा जैसे कामों में बहुत इस्तेमाल होते हैं। इनके और भी एडवांस वर्जन हैं, जैसे LSTMs, जो लंबी बातों को भी याद रख सकते हैं।
तो मतलब जैसा डेटा वैसा नेटवर्क। तस्वीरों के लिए CNN, सीक्वेंस के लिए RNN, ये तो काफी लॉजिकल लगता है।
बिल्कुल, आर्किटेक्चर फॉलोज फंक्शन, जैसा काम वैसा ढांचा। हाँ जरूर। देखिए, किताब इस पर बहुत जोर देती है कि अकेले एल्गोरिदम काफी नहीं थे, माहौल बनना जरूरी था, और वो माहौल तीन चीजों ने बनाया। पहला, जैसा हमने कहा, डेटा का धमाका। इंटरनेट, सोशल मीडिया, सेंसर, इनसे इतना सारा डेटा मिला, खासकर लेबल किया हुआ डेटा, जैसे तस्वीरों के साथ लिखाओ कि ये बिल्ली है। ये इन भूखे एल्गोरिदम के लिए खाना था।
सही है, डेटा तो ईंधन है इनका।
दूसरा, कंप्यूटिंग पावर में क्रांति, खासकर GPUs। ये पैरेलल प्रोसेसिंग में माहिर होते हैं, मतलब एक साथ कई गणनाएं कर सकते हैं, और न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग में यही चाहिए होता है। तो जो काम पहले महीनों लगते थे, वो GPUs ने दिनों या घंटों में समेट दिया। ये बहुत बड़ा फैक्टर था।
हाँ, स्पीड तो मैटर करती है।
और तीसरा, बेहतर सॉफ्टवेयर और टूल्स। गूगल ने टेंसरफ्लो निकाला, फेसबुक, अब मेटा ने पाइटॉर्च। ये ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, मतलब कोई भी इन्हें मुफ्त में इस्तेमाल कर सकता है, अपने मॉडल बना सकता है, एक्सपेरिमेंट कर सकता है। इससे इनोवेशन बहुत तेज हो गया।
यानी रिसर्च लैब से निकल कर ये आम डेवलपर तक पहुंच गया। एक तरह का लोकतंत्रीकरण हुआ AI का।
बिल्कुल। और यहीं से किताब भविष्य की ओर देखती है। वो मानती है कि डीप लर्निंग कमाल की चीज है, पर ये कोई जादुई छड़ी नहीं है। इसकी अपनी सीमाएं हैं।
जैसे कि
एक तो वही ब्लैक बॉक्स वाली समस्या, हमें हमेशा ठीक ठीक नहीं पता होता कि मॉडल ने कोई फैसला क्यों लिया, उसकी सोच को समझना मुश्किल है।
हाँ ये तो है, अगर कोई गलती हो तो पता कैसे चलेगा क्यों हुई।
एग्जैक्टली। दूसरा, ये डेटा पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अगर आपका ट्रेनिंग डेटा ही बायस्ड है, मतलब उसमें किसी तरह का पक्षपात है, तो मॉडल में वही सीख लेगा और पक्षपाती नतीजे देगा।
ये तो काफी गंभीर मुद्दा है, इसके तो सामाजिक परिणाम भी हो सकते हैं।
बिल्कुल। और किताब इन नैतिक जिम्मेदारियों की बात करती है, पूर्वाग्रह, प्राइवेसी, नौकरियों पर असर, इन सब पर सोचना जरूरी है। केलेहर का एक कोट है जो मुझे बहुत सही लगा, हर एआई सिस्टम अपने रचनाकारों और प्रशिक्षण डेटा के पूर्वाग्रहों और मान्यताओं को दर्शाता है।
मतलब तकनीक न्यूट्रल नहीं होती, उसे बनाने वाले और जिस डेटा पर वो पली बढ़ी है उसकी छाप उस पर रहती है।
सही कहा, ये याद रखना बहुत जरूरी है।
तो अगर हम इस पूरी बातचीत से या किताब से कुछ मुख्य सबक या संदेश निकालें तो वो क्या होंगे?
मेरे ख्याल से पहला और सबसे अहम संदेश ये है, ये विकास है क्रांति नहीं। डीप लर्निंग दशकों की मेहनत का फल है जो सही समय आने पर खिला, ये कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं है। दूसरा, इसकी असली ताकत उस हायरार्की वाले तरीके से सीखने में है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स पैटर्न को खुद बखुद पहचान लेना, ये ऑटोमैटिक फीचर लर्निंग बहुत पावरफुल है।
और तीसरा, शायद वो सीखने की प्रक्रिया बैक प्रोपगेशन और ग्रेडियंट डिसेंट वाली बात, कि सीखना एक लगातार चलने वाला, गलतियों से सुधरने वाला काम है।
हाँ, और चौथा वो परफेक्ट स्टॉर्म वाली बात, कि ये सफलता सिर्फ एक चीज से नहीं आई बल्कि डेटा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के सही संगम से मुमकिन हुई।
और एक और बात जो आपने कही थी, जैसा काम वैसा ढांचा, मतलब डेटा के हिसाब से सही आर्किटेक्चर चुनना, CNNs RNS वाली बात।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि ये कितना प्रैक्टिकल फील्ड है, थ्योरी के साथ साथ एप्लीकेशन पर भी उतना ही जोर है।
किताब में कुछ और ऐसी बातें या कोट्स हैं जो दिमाग में रह जाते हैं?
हाँ, एक तो वही जो मैंने पहले कहा था, पूर्वाग्रह वाला। एक और है जो इस तकनीक के बारे में फैले रहस्य को कम करता है, डीप लर्निंग कोई जादू नहीं है, ये डेटा में पैटर्न खोजने के लिए तकनीकों का एक शक्तिशाली सेट है।
हाँ, ये इसे जमीन पर लाता है।
और एक और विचार है जो भविष्य के लिए बहुत जरूरी लगता है, AI के युग में सबसे महत्वपूर्ण कौशल न्यूरल नेटवर्क प्रोग्राम करना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि उन्हें कब और कैसे उचित रूप से लागू किया जाए।
मतलब सिर्फ कोडिंग जानना काफी नहीं है, स्ट्रेटजी और समझदारी ज्यादा जरूरी होगी।
बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी समस्या के लिए कौन सा टूल सही है और उसके नैतिक पहलू क्या हैं, AI लिटरेसी जिसे कहते हैं।
ये बात तो बहुत पतेगी है। अच्छा, अब ये सारी ज्ञान की बातें हो गई, इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या कनेक्शन है, हम इन आइडियाज का क्या करें?
देखिए, सबसे पहले तो हम अपने आसपास की टेक्नोलॉजी को थोड़ा बेहतर समझ सकते हैं। अगली बार जब नेटफ्लिक्स आपको कोई मूवी रेकमेंड करे या गूगल फोटोज आपके दोस्तों को पहचान ले, तो आप सोच सकते हैं कि अच्छा, यहाँ शायद CNN या कोई और डीप लर्निंग मॉडल काम कर रहा है,
वो पैटर्न पहचान रहा है।
हाँ, एक जागरूकता आती है। दूसरा, कामकाज की दुनिया में अगर आप बिजनेस में हैं, तो ये समझना कि डीप लर्निंग क्या कर सकती है और क्या नहीं, ये आपको बेहतर फैसले लेने में मदद करेगा, किन प्रोजेक्ट्स में निवेश करना है, कहाँ नहीं। और अगर आप किसी और फील्ड में हैं, तो ये सोचना कि AI आपके काम को कैसे बदल सकता है, कौन से काम ऑटोमेट हो सकते हैं और कौन से स्किल्स हैं जो इंसान ही कर सकते हैं, जैसे क्रिएटिविटी, मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्विंग, लोगों को समझना, उन पर फोकस करना।
यानी AI के साथ मिलकर काम करने की तैयारी करना, न कि उसे डरना।
बिल्कुल। किताब का एक और कोट इसी बात पर जोर देता है, डीप लर्निंग ने हमें पैटर्न पहचान को स्वचालित करने की क्षमता दी है, लेकिन मानवीय निर्णय यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक है कि कौन से पैटर्न सार्थक और नैतिक है जिन पर कार्रवाई की जाए।
मतलब AI पैटर्न बता सकता है, पर उन पैटर्न का क्या करना है, ये फैसला इंसान का है और ये फैसला नैतिक होना चाहिए।
सही। AI एक टूल है, बहुत शक्तिशाली टूल, पर उसे चलाना और उसकी दिशा तय करना, ये जिम्मेदारी हमारी है।
तो इस पूरी चर्चा से आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे या सबसे चौंकाने वाली बात क्या रही?
मेरे लिए शायद सबसे बड़ी सीख यही थी कि ये सफलता सिर्फ स्मार्ट एल्गोरिदम्स की वजह से नहीं है, वो पूरा इकोसिस्टम, डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिटी, उसका एक साथ आना कितना जरूरी था। ये दिखाता है कि बड़ी तकनीकी सफलताएं अक्सर अकेली नहीं आती, कई चीजों का मेल होता है।
ये बात तो है, और मेरे लिए सच कहूँ तो वो हायरार्की वाली लर्निंग सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग थी। ये सोचना कि मशीनें बिना बताए परत दर परत सरल से जटिल चीज़ें समझना सीख सकती हैं, ये वाकई अद्भुत है, और इसने मुझे एक सवाल पर सोचने पर मजबूर कर दिया।
क्या सवाल?
यही कि अगर मशीनें इस तरह सीख सकती हैं, एक नींव बनाकर, फिर उस पर और ज्ञान जोड़कर, फिर और, तो क्या हम इंसानी शिक्षा में, मतलब बच्चों को पढ़ाने या कुछ भी सीखने में, इस प्रिंसिपल को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम ज्ञान को इसी तरह लेयर बाय लेयर ज्यादा प्रभावी ढंग से बना सकते हैं? ये सवाल मेरे मन में घूम रहा है।
वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प सवाल है, और शायद इसका जवाब हाँ में हो। सोचने लायक बात है बिल्कुल।
तो ये थी हमारी आज की ज्ञान गोष्ठी जॉन डी के लहर की किताब डीप लर्निंग पर। उम्मीद है आपको इस जटिल लेकिन रोमांचक दुनिया की एक साफ तस्वीर मिली होगी।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।